یہ باتیں غور کیا کریں, غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو ہر چیز کا اس طرح سے جاننے والا ہے, وہ ایسا علیم ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے اللہ تمہارا رب, اور پھر وہ کیسا علیم ہے, ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَمُوا, جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فحذروہ, جان لو اللہ کو پتہ ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے تو ڈرو اس سے. ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور انسان کا پرابلم کیا ہے, ہم تو سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. آج آپ کسی کو قرآن کی طرف بلائیں نا تو آگے سے پتہ کیا جواب ملتا ہے, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں کیا بتانا ہے, ہمیں نہیں بھلا پتہ. ہمارا علم اس کے علم کے مقابلے میں کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں. پھر بھی ہم اتنے دھڑلے سے ہم کہہ دیتے ہیں میری تو سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی, مجھے تو سمجھ نہیں آتی اللہ کا یہ حکم کیا ہوگی, یہ کیا بات ہوئی, وہ کیا بات ہوئی. اللہ اکبر, تم کہاں احاطہ کر سکتے ہو اس کے علم کا. اس کا علم ایسا ہے وعندہ مفاتح الغیب, اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, جو غیب کے خزانے ہیں نا ان کی چابی اس کے پاس ہے. لا یعلمہا الا ہو, ان کو علم کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یہ سورہ انعام میں ہے, وہ جانتا ہے جو کہ خشکی میں اور جو سمندر میں ہے. اور دریاؤں سمندروں کا کتنی ریسرچز انہوں نے کر لی, ابھی تک ان کو ساری سپیشیز کا بھی نہیں پتا چلا وہاں پہ. روز آئے دن کہہ دیتے ہیں اب یہ ایک نئی فش انہوں نے معلوم کی ہے, ڈسکور کی ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی ہوتی. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کو علم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کا تو ریکارڈ کوئی رکھنا چاہتا ہی نہیں, کیونکہ کرنا رکھنا کیا ہے, ویسے بھی کون رکھ سکتا ہے. ابھی ہمارے شہر کے اندر کتنے پتے گر رہے ہیں, کون سا پتا ابھی ہوا کے اندر ہے, کون سا پتا ہے جس کو کون سی ہوا چلے گی تو آ کے اس کو اڑا کے لے کر جائے گی. اللہ کو یہ بھی علم ہے, اس کے اذن سے گرتا ہے, اس کی اجازت سے گرتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں گر رہا درخت سے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس سے ایک بات نوٹ کریں, اللہ نے بتا دیا تمہاری زندگی کا بھی جب پتا کٹے گا نا اللہ کو پتا ہے, ایک ایک پتے کو وہ جانتا ہے. فال میں آپ دیکھیں ہر طرف کتنے پتے گرے ہوتے ہیں. آپ ایک شہر کا سوچ لیں, ایک ملک کا سوچ لیں, یا ایک یہ اپنی جو آپ کی زمین ہے پوری, اس پہ کتنے پتے آج گرے, کوئی اکاؤنٹنگ کر سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے آپ کو؟ اللہ کے علم میں, اس کے ریکارڈ کے اندر ہے, ایک ایک پتا بھی گنا ہوا ہے اس نے. سمندروں میں کتنے قطرے ہیں پانی کے وہ جانتا ہے, کتنے قطرے بھاپ بن کے اوپر بادلوں میں چلے جائیں گے اس کو ان کا بھی پتا ہے, وہ بادلوں کی شکل میں کتنے قطرے کہاں تک پہنچے وہ اس کو بھی جانتا ہے, پھر کتنے قطروں نے گرنا ہے, ایک ایک قطرہ گن کے گرتا ہے, ایک ایک قطرہ گنا ہوا ہوتا ہے, کاؤنٹڈ ہوتا ہے, ایسے نہیں ہیپ ہیزرڈ ہی جتنی مرضی ادھر بارش ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر, نو, اتنے قطرے یہاں پہ گریں گے اور اتنے یہاں گریں گے, ایک ایک قطرہ کاؤنٹڈ ہے. سبحان اللہ, یہ ہے وہ اللہ. پھر دیکھیں آگے اس آیت کے اندر جو میں سورہ نام کی پڑھ رہی تھی, ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اور کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں کے اندر, تم تو دانہ ڈال کے اندھیرے کے اندر اور چھوڑ دیتے ہو نا, اب ہمیں کیا پتہ نیچے دانہ وہ گل گیا سڑ گیا یا پھر دانہ پھٹ رہا ہے اور اس کے اندر سے کوئی کونپل نکل رہی ہے, ہمیں تو نہیں پتہ زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ کو اس کا بھی علم ہے جو وہ چھپا دیتے ہو تم زمین کے نیچے. اس سے دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ تمہارا پتا کٹے گا نا اللہ کو وہ بھی پتا ہوگا, اور جب تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے تو لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے مگر تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا علم بھی تمہارے رب کو ہوگا. اور خشک اور تر کا سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے پاس ایک ریکارڈ بک میں, سب کچھ اس کا علم ایسا ہے. ایسے علم والے کو کوئی کوسچن کرے تو پھر تو اس کی عقل کے اوپر ہی ماتم کرنا چاہیے, پھر اور کسی کو کیا کہہ سکتی. ایسے علم والے کو بھی کوئی کوسچن کر سکتا ہے؟ हम यहाँ पे लोगों की डिग्रियों से इंप्रेस हो जाते हैं, सोचते हैं वो फलाने के पास इतनी बड़ी डिग्री है, वो फलाना इतना इल्म वाला है, वो फला फला यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वाह भाई वाह क्या बात है। अल्लाह का इल्म जानते हो कि कैसा है? जो एक पत्ता भी गिर जाए तो उसको इल्म है, कौन आज मर गया उसको इल्म है, कौन कल मरेगा उसको ये भी पता है, और कौन कल मरा था उसको ये भी पता है, कौन 10 करोड़ साल बाद मरेगा उसको ये भी पता है। कितनी इंसान को तो छोड़ें, कितनी चूंटियां मर गई, कितनी जिंदा हैं, कितनी पैदा हो रही, कितनी मां के पेट में चूंटी के पेट में पल रही हैं वो भी जानता है। कितनी आज बकरियां जिबा हुई, उनके बाल कहाँ पे गिर गए, उनके गोश्त की एक एक बोटी किस किस के मुंह में गई, किसकी हड्डी कहाँ गिरी, किसकी खाल किधर पहुंची, एक दिन में कितनी मछलियां, कितनी मुर्गियां, कितनी गायें, कितनी बकरियां कहाँ जिबा हो रही, कहाँ खाई जा रही हैं, कौन खा रहा है, एक एक लुकमे का हिसाब अल्लाह के पास है। ऐसा रब जो इतना अजीम रब हो, क्या इंसान को झुक नहीं जाना चाहिए उसके सामने कि मेरा मालिक कितना इल्म वाला है, कैसा उसका इल्म कामिल है, मुकम्मल है, और उसको मोहताज नहीं है कि फरिश्ते आके उसको रिपोर्ट देंगे तो उसका पता चलेगा, नहीं वो खुद देख रहा है, अंधेरा है उसको उसमें भी इतना इल्म है जितना रोशनी में, माजी हाल मुस्तकबिल सब बराबर है, और उसका इल्म जाती है। आप देखें रात का अंधेरा हो उसमें जंगल का अंधेरा हो, उस जंगल में एक स्याह पत्थर हो उस पे एक काली चूंटी रींग रही है, तो मेरा रब ये नहीं फरमाता कि मैं चूंटी की हरकत देख रहा हूं, वो फरमाता है मैं चूंटी के हकीर पैरों से जो उस पत्थर पे लकीर पड़ रही है ना मैं उसको भी देखता हूं। सोचे आप साथ क्या उस अल्लाह के इल्म को की इंतहा जो है ना, हम नहीं पहुंच सकते उस तक, समंदरों में क्या हो रहा है, दूसरे सितारों सैयारों में क्या हो रहा है, हम नहीं पहुंच सकते इस उसकी इल्म तक भी नहीं हम जान सकते, इसका इल्म हासिल करना तो दूर की बात है। तो अल्लाह ताला फरमाते नहीं है हाता कर सकता कोई भी, एनकम्पस नहीं कर सकता। हाता करने का मतलब क्या होता है, एक तो होता है किसी चीज को जानना, एक होता है किसी चीज का अहाता करना यानी पूरी तरह उसको घेर लेना, हर चीज उसके बारे में मालूमात ले लेना, तो कोई अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह के इल्म में से किसी चीज का भी कोई भी अहाता मखलूक नहीं कर सकती, इल्ला सिवाय इसके कि वो खुद दे दे, जितना जर्रा बराबर अल्लाह ने इल्म दिया ना उतना बस इंसान के पास है। कंप्लीट मगर अहाता करना किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज का ना इंसान पूरी तरह उसको एनकम्पस कर ले, वो नहीं इंसान के बस में। आज तक आप देख लें कोई चीज ऐसी नहीं है कि साइंसदान कह दें या वो रिसर्चर्स कह दें कि भाई हमने इसके बारे में सारी मालूमात ले ली, अब कोई चीज रह ही नहीं गई इसके बारे में, हम सब जान चुके हैं। नहीं, एवरी डे नई से नई रिसर्च आ रही होती। आप ह्यूमन बॉडी ले लें, ह्यूमन बॉडी के बारे में इतनी रिसर्च हो चुकी है फिर भी नई से नई बातें, तो अहाता नहीं कर सकता कोई, पूरी तरह नहीं जान सकता। मगर हाँ, एक ड्रॉप ऑफ नॉलेज अल्लाह ताला ने जो इंसान को दे दिया है, वो भी अपने इज़्ज़त से दिया है, अपनी इज़्ज़त से दिया, वो सिर्फ इंसान के पास है। इंसान के पास जितना भी इल्म है ना, याद रखे अल्लाह के देने से है, उसकी इजाजत के बगैर कोई हासिल नहीं कर सकता। इसका मतलब है इस दुनिया में जो भी डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, जो भी एक्सप्लोर करते हैं लोग, तो ये इल्म अल्लाह की इजाजत से मिला। आप मुतासिर होकर वाह वाह तो करते हैं, फलां ने ये कर दिया, वो देखो कितनी तरक्की हो गई, चांद तक पहुंच गए इंसान, फलां ने ये कर लिया ये कर लिया, तो वो ये उसके कमाल पे तो बहुत बातें हैं उसकी कमाल की हो रही हैं, ये हो रही हैं। अल्लाह ने अपने इल्म में से दिया है उसको, उस अल्लाह की कभी तारीफ भी तो बयान करो कि उसका इल्म कैसा है। सुभान अल्लाह, कि उसके इल्म में से एक जर्रा जर्रे से भी कम मिला है तो इंसान ने ये कर दिया, तो उसका इल्म क्या होगा। वरना अगर आप इंसानों के कमाल की बात करती हैं ना, इंसानों के कमाल का तो हाल देख लें आप देख ही रही होंगी, मलेशिया का एक जहाज घुमा हुआ है, कब से घुमा हुआ है, सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहा, किधर चला गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो बरमूदा ट्रायंगल है उसमें कई जहाज जाके गायब हुए, कुछ ये कुछ जान ही नहीं सके, इधर उधर की बस बातें करते रहते हैं। उसके बाद अल्लाह ने ऐसा घुमा दिया देखें उस जहाज के पीछे कि दुनिया में जगह जगह ऊपर इनके पास सैटेलाइट्स हैं, ये हैं, पता नहीं क्या क्या हमने यादें कर ली हुई हैं, वो किसी ने कहा वो याजूज माजूज कहाँ छुपे होंगे, अगर छुपे होते तो दुनिया तो सारी हमने देख ली है, कहीं मिले नहीं। और तुमसे तो एक जहाज नहीं मिल रहा, एक जहाज नहीं मिल रहा, याजूज माजूज किधर से ढूंढोगे तुम, जिनको अल्लाह ने छुपाया हुआ, जब तक छुपाया हुआ ये उसका इल्म है, जब जिस दिन वो चाहेगा उस दिन वो रिवील कर देगा, उस दिन पता चल जाएगा। कैंसर है और कई बीमारियां हैं, देखिए एड्स है, इनका इलाज अभी तक इनसे फाइंड नहीं हो रहा, ये कोई सही इलाज ये बता दे, क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, अपने खजाने इल्म के खजानों में से इंसान को दे नहीं देगा, इंसान नहीं जान सकता। आप इनको नहीं पता चलता, ये अपनी रिसर्च कर रहे हैं मरने के बाद क्या होता है। आपको पता है साइंसदानों ने ये भी कोशिश की कि जो मरने वाला है उसके साथ एक कोई कैसेट कोई ये करके तो उसके साथ कब्र में रख दिया जाए, ताकि पता चले इसके साथ होता क्या। इनको कुछ नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है, तो अल्लाह ने वही के इल्म से बताया, जो भी बताया, ये अपनी रिसर्चें कर लें, जो मर्जी रिसर्च कर लें, कुछ नहीं पता चल सकता। रूह के बारे में हम आज तक रूह के बारे में जान ही नहीं सके, रूह क्या चीज है, सबको इसके ऊपर ईमान है कि रूह एक है, लेकिन नहीं उसका इल्म नहीं है। तो अल्लाह है जो अपने इल्म के खजानों में से कुछ देता है, जितनी मर्जी है उसकी वो देगा, और जब मर्जी नहीं होगी नहीं देगा, और जिस वक्त वो चाहेगा तब देगा। अब न्यूटन सदियों से सेब क्या जमीन पे नहीं गिर रहा था, उसने सेब देखा जमीन पे गिरा, तो न्यूटन का कमाल नहीं हो गया, अल्लाह ने अपने इल्म के खजानों में से एक जरा सी बात उसको दे दी, उसने कहा कि ग्रेविटी होती है। तो किसी के ऊपर कोई चाहे दीन की बात है चाहे और कोई दुनिया के इल्म की बात है, कोई खुलती है ना बात तो ऐसे ही नहीं खुल जाती। अल्लाह फरमाता है मैं अपने इल्म के खजानों में से जिसके लिए चाहता हूँ देता हूँ। तो अपने लिए हम सारे दुआ करें कि अल्लाह इल्म के खजाने तेरे पास हैं, तो हमारे लिए भी अपना इज़न फरमा दे कि हमको भी तेरे इल्म के खजानों में से थोड़ा इल्म दे दे अपने दीन का। अल्लाह अपनी मारफत का हमें भी इल्म दे दे, हम पे भी ये इल्म खोल दे, वरना कोई इस इल्म तक पहुंच नहीं सकता, किसी की रीच नहीं हो सकती। तो जिसके पास इतने खजाने हैं, देखिए हर चीज का खजाना उसके पास है, सुभान अल्लाह, इज्जत के खजाने उसके पास हैं, दौलत के रिस्क के खजाने उसके पास हैं, सेहत के खजाने उसके पास हैं, हर चीज का खजाना जिसके पास है, हम उसको तो छोड़ देते हैं और दूसरों के पास जाके मांगते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि गैब के खजानों की चाबियां उसके पास है। सोचें अगर मेरे पास किसी कमरे की दरवाजे की चाबी हो और आपने कमरे में जाना है, तो आप कब जा सकती हैं, जब मैं कमरे का दरवाजा खोलूं, राइट। अगर मैं खोलूंगी नहीं तो आप वहां से कोई चीज नहीं ले सकती। तो ये सारे खजानों की चाबियां ना अल्लाह के पास है, वो जब तक नहीं खोलेगा, चाहे वो इल्म है, चाहे वो दौलत रिज्क है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो बुलंदियां हैं, चाहे वो दर्जात हैं, चाहे वो मर्तबे हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, उसके खजाने मेरे रब के पास हैं। जिस वक्त तक वो ना खोले उस वक्त तक नहीं मिल सकता किसी को भी कुछ। तो फिर उससे मांगो ना, उसके पास सारे खजाने हैं। वसिया कुर्सी यूह समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी वसी है, छाई हुई आसमानों और जमीन पे। कुर्सी का मतलब क्या है, एक तो उलमा ने इसका मतलब ये लिया कि कुर्सी यानी वैसे कुर्सी नहीं जैसे हम कहते हैं वो वजीर आजम की कुर्सी, आजकल कुर्सी कौन छोड़ता है, सदर की कुर्सी। तो कुर्सी का मतलब इकतदार है कि उसके इकतदार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आसमानों और जमीन के ऊपर छाया हुआ है, तो वो भी ठीक एक बात है। लेकिन कुर्सी का माना एक वाकई कुर्सी के मतलब वो भी उसमें है, क्योंकि एक हदीस में आता है ये कुर्सी रहमान के कदम की जगह है। अब ये हमें किसी को इमेजिन करने की या कोई को सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे कदम की जगह या क्या है, वो हम हमारी जहन में नहीं आ सकता, ये बियॉन्ड है। देखें जवाब आपको अभी ये पिछले आयत के पिछले हिस्से में मिला है ना, वला युहीतूना बिशय मिन इल्मे इल्ला बिमा शाअ, तुम्हारे इल्म में आ ही नहीं सकती कोई बात, मगर अल्लाह जो जितना चाहे जो चाहे इल्म दे दे तुम्हें थोड़ा सा, वो जिस जितना इल्म खोल दे। तो ये इल्म अल्लाह ने नहीं खोला, हमें नहीं समझ आ सकती, आप जितने मर्जी अकल के घोड़े दौड़ाएं। तो कुर्सी एक वो भी कुर्सी है जो आसमान और जमीन का हाता किए हुए, जिसने घेरा हुआ, अब वो अल्लाह की शान के लायक ही है कि वो कैसी कुर्सी है क्या है। मगर इतना सा सिर्फ आपको मैं बात बता देती हूँ, इब्ने अब्बास फरमाते हैं सातों जमीने और सातों आसमान अगर फैला दिए जाए और सबको मिला दिया जाए तो भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे एक छटियाल मैदान में या जैसे एक सहरा में डेजर्ट के अंदर एक रिंग पड़ी हुई है। आप अपनी अंगूठी देख लें, इस रिंग को अगर आप अपने घर में ही कहीं गिर जाती है ना तो हमें मिलती नहीं है, सारा घर ढूंढता है तो मिलती नहीं, एक घर में एक डेजर्ट में इस एक अंगूठी पड़ी हो तो बताएं कि वो इसकी क्या हैसियत है या वो क्या चीज है। सातों जमीनें और सातों आसमान इस तरह से बिछा दिए जाएं, साथ साथ अटैच कर दिए जाएं, मिला दिए जाएं कुर्सी के मुकाबले में, वो एक इस एक रिंग की हैसियत की तरह है जैसे एक रिंग डेजर्ट में पड़ा हुआ। इतने छोटे हैं अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में, और हदीस में है कि कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे बस ये एक लोहे का हल्का चटियल मैदान में फिर डाल दिया जाए। सोचें, इसीलिए अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेर रखा है, मगर जिस तरह नया पालान चिरचराता है वो कुर्सी अल्लाह की अजमत से चिरचरा रही है, सुभान अल्लाह। और वो कुर्सी को उठाने वाले कैसे हैं और अर्श को उठाने वाले कैसे हैं, कई इसके अंदर भी रिवायात आती हैं कि ऑथेंटिसिटी इतनी मालूम नहीं है इसलिए नहीं मैं आपके सामने रख रही, मगर ये बस इतनी बात से आप समझ जाएं इतनी इस हदीस से कि कुर्सी आसमानों और ज़मीन के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है, कैसी है। और ये आसमान और ज़मीन जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, और आसमान से मतलब ये आसमान नहीं, जितनी गैलेक्सीज हैं, जितने सितारे सैारे ये सब चीज़ें हैं ना, उनके मुकाबले में कुर्सी ऐसे है। सिर्फ आसमान नहीं, ये जिस जो हमारी आंखों के सामने है, ठीक है, और ये सिर्फ आपकी जमीन ही, सातों जमीनों का मतलब ये जितनी कायनात में जितनी चीजें हैं ना ये सब ज्वाइन कर ले, तो ये हाल है कि ये इतनी छोटी इतनी हकीर है, इतनी यानी इनकी कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल एक रिंग की तरह डेजर्ट में। और फिर अर्श की तो क्या ही बात है, ये अर्श का तो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता कि अर्श कैसा होगा अल्लाह ताला का। और इसी तरह ये भी है कि एक रिवायत में आता है कि जो कुर्सी को के और अर्श के दरमियान जो हामिली ने अर्श हैं और जो हामिली ने कुर्सी हैं, जिन्होंने कुर्सी उठाई हुई और जिन्होंने अर्श उठाया हुआ, उनके दरमियान 70 हिजाब हैं तारीकी के और 70 हिजाब हैं नूर के, और हर हिजाब की मोटाई जो है ना, जो उसकी थिकनेस है वो 500 ईयर्स के रास्ते के बराबर है। अगर ये हिजाब ना होते तो कुर्सी के उठाने वाले अर्श के उठाने वालों के नूर से जल जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही को बेहतर मालूम है ये बातें, हमारी तो अकल समझ से बियॉन्ड ही हैं कि क्या हैं और क्या वहां के हालात हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और अल्लाह वो है जो थकता नहीं है इनकी हिफाजत से। ये ना सोचो सारी कायनात को संभालता है, सारी कायनात की हिफाजत करता है, सारी कायनात को कायम रखा हुआ है, सारी कायनात को चला रहा है, मगर उनकी हिफाजत से वो थकता नहीं। हम एक घर के काम करने से ही थक जाते हैं, है ना, मगर एक घर के मुकाबले में एक शहर का काम सोच लें, उसकी हिफाजत सोच लें, और एक मुल्क की हिफाजत सोच लें, एक ज़मीन पे जितनी खुश्की तरी सब है उनकी सोच लें, फिर हमारे सोलर सिस्टम को सोचें, फिर यहाँ पे जितने सियारे सितारे हैं उनको सोचें, फिर उसके मुकाबले में पूरी गैलेक्सी और गैलेक्सीज हैं और ट्रिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन, वो कहते हैं आज इंसान ने ये मतलब ये भी डिस्कवर किया कि इतने स्टार्स हैं, इतने सितारे हैं, और वल्लाहु आलम और कितनी मखलूक हैं जिसका हमें थोड़ी पता है, हम तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं, चांद तक ही पहुंच के हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया कि हम बहुत दूर तक चले गए, पर अल्लाह ताला की कितनी मखलूक और है वो उसको ही पता है। तो इनकी हिफाजत करके, इनको थाम के, इनका निजाम चला के वो थकता नहीं है। सोचें जरा कि हिफाजत उसको थकाती नहीं है, वो ये यानी एक दिन की दो दिन की बात नहीं है, पता नहीं कब से ये कायनात चल रही है, तब से आज तक खरबों अरबों साल गुजर चुके हैं ना, हमारा तो टाइम भी मेजर नहीं कर सकता कितना वक्त गुजर चुका है, उस वक्त से वो हिफाजत करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं है, फिर भी नहीं थकता वो। तो सोचें जरा, ये इंसान सोचता है मैं ना मर के मट्टी हो जाऊंगा, मेरा जर्रा जर्रा हो जाएगा, मेरा चूरा चूरा हो जाएगा, तो अल्लाह को पता नहीं कहीं पता ही नहीं चलना, वो तुम्हारे एक एक जर्रे की भी तो वो हिफाजत कर रहा है, एक दिन कौन कहेगा तो सारे जर्रे जमा हो जाएंगे और इंसान खड़ा हो जाएगा। एक हदीस में आता है, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है और रात दिन की बख्शिश भी उसके खजानों को कम नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर क्या तुम्हें मालूम है जब जमीन और आसमान पैदा किए तो उसने उस पे क्या खर्च किया, कितना यानी खर्च किया। जब देखें जैसे कोई भी कोई घर बनाता है, कोई कुछ करता है, लोग पूछते हैं ना कितना खर्चा आया, तो जमीन और आसमान उसने बनाए, कितना खर्च किया उसने इसके बारे में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो भी खर्च किया उसमें उसके खजानों में कोई भी कमी नहीं आई, कोई भी कमी नहीं आई। आप देख लें कि कितनी कुछ ये चीजें सारी अल्लाह ने बनाई, कोई कमी नहीं आई। अबू जर फरमाते हैं, मस्जिद में मैं दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सूरज गरूब हो रहा था। आपने फरमाया, अबू जर तुम्हें पता है कि ये कहां जा रहा है, कहां जाता है ये। मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। फरमाया, ये जाता है और सज्दे की इजाजत चाहता है, फिर इसे सज्दे की इजाजत दे दी जाती है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इजाजत चाहेगा मगर उसे इजाजत नहीं दी जाएगी। कहा जाएगा, ये वहीं से वहीं चले जाओ जहां से आए हो, तो ये मगरिब से तुलू होगा। ये बुखारी की हदीस है। तो हिफाजत कर रहा है वो अल्लाह, वो चला रहा है, वो निजाम को कायम रखे हुए। तभी देखें सूरज रोज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। एक कानून अल्लाह का चल रहा है ना, ये उसको थकाता नहीं है। ये निजाम चलाना, इस निजाम को की हिफाजत करना, और देखें एक को चला के वो दूसरे से गाफिल नहीं होता कि सितारों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो जमीन से गाफिल हो गया, या इंसानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो जानवरों से गाफिल हो गया। हमारा तो यही हाल होता है ना, उसका ऐसा नहीं है। वो सातों जमीनों आसमानों की बादशाहत को संभालते हुए भी किसी चीज से गाफिल नहीं है। वाहुल अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंद है और वो बहुत अजीम है। अब देखें सारी बातों को बता के तुम अल्लाह की जात को समझ ही नहीं सकते। लैसा का मिसली ही शैउन, उस जैसा कोई है ही नहीं। इंसान की अकल जो है ना हार जाती है, वो गिव अप कर देता है, वो समझ सकता ही नहीं है। बस ये जान लो, अल्लाह वो है जो हुवल अलीयुल अज़ीम, वो बुलंद भी है, सबसे बुलंद है और सबसे ज्यादा अजमत वाला है। इवन हम ये सिफात भी नहीं समझ सकते, उसकी जात को तो समझना दूर की बात है, उसकी जात तो वो हमारी अकल से बियॉन्ड 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 है, मगर इतनी बात को भी नहीं हम समझ सकते जो उसकी सिफात है कि वो बुलंद, कितना बुलंद, कैसा बुलंद, और वो अजीम, कैसा अजीम। बस अल्लाह ने बता दिया, हमें बस इसके ऊपर ईमान ले आना है। हमें इतनी बात की बस समझ होनी चाहिए, लव कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु, अगर समंदर स्याही बन जाए और अल्लाह की बातें लिखी जाने लगे हैं तो समंदर खत्म हो जाएंगे। ये स्याही खत्म हो जाएगी मगर तेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी। और सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, सारे दरख्त कलमे बन जाएं और अल्लाह की तारीफें उसकी बातें लिखने लगो तो उसकी बातें खत्म नहीं होने वाली। दरख्तों की कलमे टूट जाएंगी, घिस के खत्म हो जाएंगी, समंदरों की स्याहियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे और समंदर ले आओ फिर भी उसकी बातें नहीं खत्म होंगी। मैं तो इतनी देर बोली हूं तो इतना ही हम बोल सकते हैं, इतना दो तीन घंटे आपने सुन लिया होगा, लेकिन अल्लाह की तो तारीफ इतनी भी बयान करो ना तो उसकी तो तारीफ खत्म नहीं होगी ना। एक आयत की भी तफसीर नहीं मुकम्मल हो सकती, हम इसका हक नहीं अदा कर सकते। इतनी अजमत वाली ये आयत है और इसको हम पढ़ते हैं लेकिन हम इसका तर्जुमा नहीं जानते, इसका माना नहीं जानते, या इसकी डेप्थ में नहीं जाते कि कैसा वो रब है, वो कैसा रब है। अब मुझे उसके सामने किस तरह फिर झुक जाना चाहिए, ऐसे रब के लिए क्या कोई क्वेश्चन कर सकता है, कोई बात कर सकता है। फिर हम ऐसी ऐसी बातें कहीं मुंह से निकालते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें समझ देना। या अल्लाह हम इतने ना समझ हैं कि अल्लाह हमारी ना समझी समझ के तू हमें माफ कर देना। कि उस अल्लाह के बारे में कई लोग कहते हैं, वो उसने इतना दूर घर लिया अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े में जाके, वो तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम अपने बच्चे की बात कर रहे हो क्या, तुम देख रहे हो तुम किस रब की बात कर रहे हो, ये अजीम रब की तुम बात कर रहे हो, तुम कैसी इस तरह की बातें। और वो وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو گرمیوں کی چھٹیوں میں بنایا. استغفر اللہ ربی, جب یہ مجھے باتیں سنائی دیتی مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا, میں بیان نہیں کر سکتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا ہوا کوئی ایسے کوئی راہ چلتے کی بات کر, یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. وہ خدا را جو قرآن پڑھنے والے نا, سیکھنے والے, سمجھنے والے, خدا را آپ ایسی باتیں نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے بھی اللہ کی عظمت نہ پہچانی اس قرآن کو پڑھ کے تو کیا کیا اگر آپ بھی یہی محاورے استعمال کریں اور یہی باتیں کریں اور پھر لطیفے بنائے میں اور پھر ایسی ایسی باتیں نا جیسے کہ عام کسی کی بات کر رہے ہیں. وہ کاش ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے. اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے تو آ ہی نہیں سکتی, وہ اتنی ہو جتنی انسانوں کی ہے نا, تو ہم تھر تھر کانپتے, تھر تھر کانپتے, ہمارے منہ سے بات نہ نکلتی, ہم اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتے کہ ہماری ان زبانوں سے, ایسی گندی زبانوں سے ہم اللہ کا ذکر کر سکیں. ہم اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتے کہ وہ کتنی پاک ذات ہے, کتنی عظیم ذات ہے, ہم نے ایسے ہی سمجھا ہوا. تو یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی عظمت بٹھا دینا, اللہ اپنی پہچان ہمیں کروا. اللہ تعالیٰ جیسا تیرا تعارف ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کی توفیق دے, ہم نہیں جانتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہاں سے لاؤں میں تیرے جیسا, تو ہی تو ہے جسے یاد کیا جائے, کوئی ہے تیرے جیسا جس کی بندگی کروں, تو ہی تو بندگی کے لائق ہے, کوئی ہے تیرے جیسا مہربان, کوئی ہے تیرے جیسا سخی, کوئی ہے تیرے جیسا مددگار. انت الملک لا شریک لہ, تو اکیلا شہنشاہ ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, تو یکتا ہے, تیرا کوئی مثل نہیں, کوئی مثال نہیں. آنکھوں کی پہنچ سے دور, خیالات کی پہنچ سے دور, تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے. یہ ہے میرا اللہ, اس اللہ کو نہیں پہچانا نا ہم نے, تو بیکار ہم دنیا میں آئے اور بیکار چیزوں میں لگے رہے اگر ہم نے اس ذات کو نہیں پہچانا. اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کو پہچان سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تلاوت سنتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.